नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में झांकने वाले हैं जिन्होंने विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, थॉमस सैमुअल कोहन। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई विज्ञान तो बस सीधी रेखा में तरक्की करता है ना, एक खोज फिर दूसरी, ज्ञान जुड़ता जाता है।
हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन कोहन ने इसी सीधी साधी तस्वीर पर आप कह सकते हैं सवाल उठाया। उनका कहना था कि भाई विज्ञान की कहानी इतनी सपाट नहीं है, इसमें बड़े मोड़ आते हैं, उथल पुथल होती है।
और इसी उथल पुथल को उन्होंने कुछ नाम दिया था, है ना, वो बहुत मशहूर शब्द।
बिल्कुल, पैराडाइम शिफ्ट। ये शब्द तो अब उनकी किताब से निकलकर हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गया है। मतलब अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, शायद कभी कभी बिना इसके गहरे मायने समझे हुए भी।
तो आज की हमारी इस ज्ञान गोष्ठी का मकसद यही है कि थॉमस कोहन के इन विचारों को थोड़ा और गहराई से समझें। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे 1922 में जन्मे और 1996 में गुजरे इस अमेरिकी दार्शनिक और इतिहासकार ने विज्ञान की समझ में जैसे एक भूचाल सला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं।
हाँ, और शुरुआत शायद उस दौर से करनी चाहिए जब कोहन सोच रहे थे, लिख रहे थे। ये 20वीं सदी का मध्य था। एक तरफ तो देखिए एटम बॉम्ब, स्पेस रेस, मतलब गजब की वैज्ञानिक खोजें हो रही थी।
हाँ, वो तो था ही।
और दूसरी तरफ फिलॉसफी में भी ये बहस तेज थी कि आखिर विज्ञान है क्या, ये काम कैसे करता है, मतलब इसकी बुनियाद क्या है।
तो उस वक्त क्या सोच हावी थी, कौन से विचार चल रहे थे?
देखिए, मुख्य रूप से दो धाराएं थीं। एक तो थी लॉजिकल पॉजिटिविज्म या तार्किक प्रत्यक्षवाद। ये लोग मानते थे कि विज्ञान एकदम तर्क पर आधारित है, लॉजिकल है।
ओके।
और ज्ञान जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होता है, संचयी होता है, मतलब हम प्रयोगों से सच साबित करते जाते हैं और ज्ञान बढ़ता जाता है।
अच्छा।
और दूसरी धारा, दूसरी तरफ थे कार्ल पॉपर, बहुत बड़ा नाम। उनका कहना था कि विज्ञान का काम सच साबित करना नहीं, बल्कि सिद्धांतों को गलत साबित करने की कोशिश करना है। इसे उन्होंने फॉल्सिफिकेशन या मिथ्याकरण कहा।
और कोहन, वो इन दोनों से ही सहमत नहीं थे?
हाँ, मोटे तौर पे नहीं, उन्होंने इन दोनों विचारों को चुनौती दी। दिलचस्प ये भी है कि उन पर कुछ और लोगों का भी असर था, जैसे अलेक्जेंडर कोहेरे। उन्होंने विज्ञान को सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं बल्कि उसके इतिहास के संदर्भ में देखने पर जोर दिया। या फिर लुडविग फ्लिक, जिन्होंने विचार समूहों की बात की कि कैसे वैज्ञानिक अकेले नहीं सोचते, पूरा समुदाय मिलकर सोचता है। और हाँ, कोल्ड वॉर का माहौल भी था, तो वैज्ञानिक तरक्की और तर्क की प्रकृति पर बहसें और भी गर्म हो गई थी।
ये तो दिलचस्प है कि कोहन खुद साइंस के स्टूडेंट थे, मतलब वो अंदर से जानते थे कि साइंस कैसे काम करता है।
बिल्कुल। सिनसिनाटी ओहायो में जन्मे थे, हार्वर्ड से फिजिक्स में पीएचडी की, वर्ल्ड वॉर टू में भी कुछ समय काम किया, तो उन्हें लैब की, वैज्ञानिकों के काम करने के तरीके की एक अंदरूनी समझ थी।
लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक फिजिसिस्ट साइंस की हिस्ट्री और फिलॉसफी की तरफ मुड़ गया? कोई खास वजह, कोई टर्निंग पॉइंट?
हाँ, एक बहुत ही मशहूर किस्सा है, इसे अरस्तु वाला क्षण भी कहते हैं। हुआ ये कि वो हार्वर्ड में पढ़ा रहे थे और उन्हें प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु की फिजिक्स पर लेक्चर देना था।
अच्छा।
तो जब वो अरस्तु को पढ़ रहे थे, उन्हें बड़ा अजीब लगा, मतलब अरस्तु जैसा जीनियस इतनी गलत बातें कैसे लिख सकता है, आज के न्यूटन के नियमों के सामने तो वो कहीं नहीं टिकती।
हाँ, ये तो होता है, हम आज के नजरिए से पुराने विचारों को देखते हैं तो वो बड़े बचकाने लगते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, कोहन भी यही सोच के परेशान थे, लेकिन फिर अचानक जैसे कोई बिजली कौंधी हो, उन्हें समझ आया, अरे मैं अरस्तु को गलत नजरिए से देख रहा हूँ।
मतलब
ये कि अरस्तु को न्यूटन के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, उन्हें अरस्तु के अपने समय, उनकी अपनी सोच, उनके अपने सवालों के दायरे में समझना होगा। उस पल उन्हें यह एहसास हुआ कि अलग अलग दौर के वैज्ञानिक सिर्फ अलग जवाब नहीं देते, वो दुनिया को ही अलग तरह से देखते हैं, उनके सवाल तक अलग होते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। और बस यही एहसास उनके पूरे काम की नींव बन गया।
वाह, ये तो सच में एक रेवलेशन जैसा रहा होगा।
तो इसी समझ से उनके वो मशहूर विचार निकले, जैसे पैराडाइम। ये पैराडाइम आखिर है क्या चीज, क्या ये बस एक थ्योरी है?
नहीं नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं, उससे कहीं ज्यादा। कोहन के लिए पैराडाइम एक वैज्ञानिक समुदाय की पूरी दुनिया है एक तरह से। इसमें सिर्फ स्वीकृत सिद्धांत नहीं आते बल्कि साझा मान्यताएं भी आती हैं, काम करने के तरीके, कौन से सवाल पूछने लायक हैं, कौन से नहीं, यहां तक के आदर्श उदाहरण भी।
अच्छा, तो ये एक तरह का पूरा फ्रेमवर्क है। हाँ बिल्कुल, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा, ये सामान्य विज्ञान के लिए जमीन तैयार करता है। जैसे न्यूटन की फिजिक्स एक पैराडाइम थी, या डार्विन का एवोल्यूशन।
ठीक है।
तो ये पैराडाइम तय करता है कि वैज्ञानिक क्या करेंगे। तो फिर ये सामान्य विज्ञान क्या है जिसका जिक्र कुहन करते हैं?
नॉर्मल साइंस।
हाँ, नॉर्मल साइंस। ये वो रोजमर्रा का काम है जो ज्यादातर वैज्ञानिक ज्यादातर समय करते हैं। ये मौजूदा पैराडाइम के अंदर होता है। कुहन ने इसकी तुलना पहेली सुलझाने से की।
पहेली सुलझाना मतलब
ये कि वैज्ञानिक मानकर चलते हैं कि भाई पैराडाइम तो सही है, बस इसमें कुछ छोटी मोटी गुत्थियां हैं, कुछ पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाना है। पैराडाइम का जो नक्शा है उसमें कुछ खाली जगह भरनी है, उसकी सीमाओं को थोड़ा और फैलाना है। इसका मकसद पैराडाइम को चुनौती देना नहीं होता।
तो फिर तो ये एक तरह से थोड़ा रूढ़िवादी काम हुआ, मतलब वो बड़े सवाल नहीं पूछता,
पिट नहीं बैठती।
अच्छा।
हाँ, ऐसी अनपेक्षित खोजें या नतीजे, इन्हें कुह ने विसंगति या अनोमली कहा।
और जब ऐसी विसंगतियां सामने आती हैं तब क्या होता है? क्या वैज्ञानिक फौरन मान लेते हैं कि अरे हमारा पैराडाइम गलत है?
नहीं नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पहले तो कोशिश होती है कि विसंगति को नजरअंदाज कर दो, या फिर उसे थोड़ा तोड़ मरोड़ कर मौजूदा पैराडाइम में ही फिट करने की कोशिश करो। अरे शायद एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हुई होगी, या हमारी समझ में ही कोई कमी है।
ये तो इंसानी फितरत है।
बिल्कुल। लेकिन जब ऐसी विसंगतियां बार बार आने लगती हैं, जमा होने लगती हैं, और उनकी व्याख्या करना मुश्किल होता जाता है, तब वैज्ञानिक समुदाय में एक बेचैनी सी फैलने लगती है। मौजूदा पैराडाइम पर भरोसा कम होने लगता है। इसी स्थिति को कोन ने संकट या क्राइसिस कहा।
संकट, क्राइसिस, यानी पुराने नक्शे पर सवाल उठने लगे हैं। तो फिर इस संकट से बाहर कैसे निकलते हैं?
संकट का समाधान तब होता है जब कोई नया, बिल्कुल नया, क्रांतिकारी विचार या सिद्धांत सामने आता है। एक ऐसा आइडिया जो न सिर्फ पुरानी विसंगतियों को समझा पाता है, बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश करता है।
और यही है,
यही है वैज्ञानिक क्रांति या साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और इसी को हम सब पैराडाइम शिफ्ट का नाम से जानते हैं। कुहन ने जोर दिया कि ये बदलाव कोई धीरे धीरे इंच इंच करके नहीं होता, ये अचानक होता है, बड़ा होता है। इसमें पुराना ढांचा काफी हद तक छोड़ दिया जाता है।
आपने पहले जिक्र किया था उन्होंने इसकी तुलना किसी और चीज से भी की थी।
हाँ, उन्होंने इसकी तुलना अक्सर गेस्टाल्ट स्विच से की। वो तस्वीरें होती है ना जिन्हें देखो तो कभी बत्तख दिखती है, फिर नजर बदलते ही खरगोश।
हाँ हाँ, वो ऑप्टिकल इल्यूजन वाली।
बिल्कुल। या कभी एक बूढ़ी औरत दिखती है तो कभी एक जवान लड़की। पैराडाइम शिफ्ट कुछ ऐसा ही है। अचानक वही दुनिया, वही आंकड़े एक बिल्कुल नए मायने देने लगते हैं। सब कुछ बदल जाता है।
ये तो सुनने में बहुत क्रांतिकारी लग रहा है।
लेकिन यहीं पर उनका एक और विचार आता है जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। अतुलनीयता या इनकमेंसरेबिलिटी, इसका क्या मतलब है?
हाँ, अतुलनीयता, ये थोड़ा पेचीदा है पर बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि दो अलग अलग पैराडाइम की आपस में पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती। उनके बीच कोई कॉमन न्यूट्रल पैमाना नहीं होता।
कोई कॉमन पैमाना नहीं, मतलब सोचिए आप क्रिकेट के नियमों से फुटबॉल के मैच को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। पैमाने ही अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं, शब्द अलग हैं। कुहन ने कहा कि अलग पैराडाइम को मानने वाले वैज्ञानिक एक तरह से अलग अलग दुनिया में रहते हैं। वो अलग सवाल पूछते हैं, अलग तरीके अपनाते हैं, यहां तक कि वो दुनिया में देखते क्या हैं ये भी उनके पैराडाइम पर निर्भर करता है।
अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान में कोई असली तरक्की नहीं होती, बस एक फैशन की तरह आप पैराडाइम बदलते रहते हैं? क्या विज्ञान तर्क पर आधारित नहीं है?
हाँ, यही सबसे बड़ी आलोचना हुई कुहन की। उन पर रिलेटिविज्म यानी सापेक्षवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। लोगों ने कहा कि भाई अगर पैराडाइम अतुल्य है तो फिर एक से दूसरे में जाना तर्कसंगत कैसे हुआ? ये तो बस भीड़ मनोविज्ञान हो गया, जिधर ज्यादा लोग चल दिए वही सही मान लिया।
तो कुहन ने इसका क्या जवाब दिया? क्या वो मानते थे कि विज्ञान अतार्किक है?
नहीं, उन्होंने बाद में इसे स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अतुलनीयता का मतलब ये नहीं कि कोई भी तुलना संभव नहीं है। जब वैज्ञानिक पैराडाइम चुनते हैं तो वो कुछ मूल्यों को देखते हैं, जैसे सटीकता, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, सरलता, कितनी दूर तक सिद्धांत लागू होता है वगैरह।
अच्छा।
हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग वैज्ञानिक इन मूल्यों को अलग अलग वजन दे, लेकिन चुनाव पूरी तरह से अतार्किक या मनमाना नहीं होता। फिर भी ये विचार कि विज्ञान पूरी तरह ऑब्जेक्टिव और रैशनल नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स भी बहुत अहम हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव था।
इन सभी क्रांतिकारी विचारों को उन्होंने अपनी किस किताब में सबसे अच्छे से समझाया है?
उनकी सबसे मशहूर और सबसे प्रभावशाली किताब है 1962 में आई द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, मतलब वैज्ञानिक क्रांतियों की संरचना। ये 20वीं सदी की सबसे अहम अकादमिक किताबों में गिनी जाती है। इसी ने पैराडाइम शिफ्ट को दुनिया भर में मशहूर किया।
और इससे पहले भी एक किताब लिखी थी उन्होंने?
हाँ, 1957 में आई थी द कॉपरनिकन रेवोल्यूशन। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया था कि कैसे दुनिया टॉलेमी के धरती केंद्रित मॉडल से कॉपरनिकस के सूरज केंद्रित मॉडल तक पहुंची। ये एक तरह से उनके बड़े सिद्धांत के लिए एक डिटेल्ड केस स्टडी थी। बाद में द एसेंशियल टेंशन जैसे निबंध संग्रह भी आए जिनमें उन्होंने अपने विचारों को और साफ किया।
अगर हम उनकी तुलना करें जैसे कार्ल पॉपर से या वो जो पहले ग्रुप था तार्किक प्रत्यक्षवादी, तो मुख्य अंतर क्या है? कुहन अलग कहाँ है?
देखिए, मुख्य अंतर ये है कि पॉपर और प्रत्यक्षवादी विज्ञान को ज्यादातर लॉजिक और मेथड के लेंस से देखते थे, तर्क और पद्धति, जबकि कुहन ने विज्ञान के ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू पर बहुत जोर दिया। उन्होंने दिखाया कि वैज्ञानिक कोई अकेले टावर में बैठकर काम नहीं करते, वो एक समुदाय का हिस्सा होते हैं। उस समुदाय की अपनी मान्यताएं होती हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि विज्ञान ज्यादातर समय यानी नॉर्मल साइंस के दौरान काफी कंजर्वेटिव होता है, रूढ़िवादी। क्रांतियां तो कभी कभार होती हैं, जबकि पॉपर विज्ञान को लगभग हमेशा एक क्रांति की स्थिति में देखते थे जहां हर थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश चल रही हो।
और उनके काम का असर कैसा रहा? क्या ये सिर्फ फिलॉसफी की दुनिया तक ही रहा?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक हुआ। उनके काम ने विज्ञान के दर्शन में एक तरह का समाजशास्त्रीय मोड़ ला दिया। इसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज या एसटीएस जैसे पूरे अकादमिक फील्ड की नींव रखी।
अच्छा।
और जैसा हमने शुरू में कहा, पैराडाइम शिफ्ट शब्द तो फिलॉसफी से बाहर निकलकर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट, यहाँ तक कि सेल्फ हेल्प की किताबों में भी पहुंच गया। हालांकि ये बात अलग है कि अक्सर इसका इस्तेमाल बहुत ढीले ढाले अर्थों में होता है, कोन के मूल मतलब से हटकर।
हाँ, ये शब्द तो आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है। क्या उनके कुछ खास कोट्स हैं, कुछ कथन जो उनके विचारों का निचोड़ बताते हो?
हाँ, कई हैं। स्ट्रक्चर से ही एक बहुत अहम है। एक पैराडाइम से दूसरे पैराडाइम में क्रांति के माध्यम से क्रमिक संक्रमण ही परिपक्व विज्ञान का सामान्य विकासात्मक पैटर्न है। ये सीधे सीधे विज्ञान की वो सीधी रेखा वाली तरक्की के आइडिया को काटता है।
और वो देखने वाली बात कि हम क्या देखते हैं, ये हमारे पैराडाइम पर निर्भर करता है।
हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति क्या देखता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो क्या देख रहा है, और साथ ही उसके पिछले दृश्य वैचारिक अनुभव ने उसे क्या देखना सिखाया है। मतलब हमारा पैराडाइम तय करता है कि हम दुनिया में क्या नोटिस करते हैं, क्या देख पाते हैं। इसे थ्योरी लेडन ऑब्जर्वेशन कहते हैं।
एक और था शायद सामान्य विज्ञान के बारे में।
हाँ, ये वाला सामान्य विज्ञान इस धारणा पर आधारित है कि वैज्ञानिक समुदाय जानता है कि दुनिया कैसी है। ये नॉर्मल साइंस के उस पहेली सुलझाने वाले, पुष्टि करने वाले स्वभाव को दिखाता है। वो मानकर चलता है कि हमारे पास सही नक्शा है, बस उसमें रंग भरना है।
लेकिन आलोचनाएं भी तो थीं। सापेक्षवाद के आरोप के अलावा और क्या कहा गया?
एक बड़ी आलोचना ये थी कि पैराडाइम शब्द खुद ही बहुत अस्पष्ट है। कहा गया कि कुहन ने अपनी किताब के पहले एडिशन में इस शब्द का 20 से भी ज्यादा अलग अलग मतलबों में इस्तेमाल किया है।
20 से ज्यादा?
हाँ, बाद में उन्होंने इसे थोड़ा साफ किया, दो मुख्य अर्थ बताए। एक ज्यादा व्यापक डिसिप्लिनरी मैट्रिक्स यानी समुदाय की पूरी सोच, और दूसरा थोड़ा संकीर्ण एग्जेम्पलर यानी मॉडल प्रॉब्लम और उसका हल। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनका मॉडल जरूरत से ज्यादा कठोर है और विज्ञान की असलियत ज्यादा जटिल होती है, या ये कि वो क्रांतियों पर इतना जोर देते हैं कि विज्ञान में जो निरंतरता होती है उसे कम आंकते हैं।
ये जानना भी दिलचस्प है कि क्या खुन खुद इन आलोचनाओं से या अपने विचारों की जो रेडिकल व्याख्याएं हुई उनसे खुश थे।
नहीं, वो अक्सर अपने काम की जो अतिवादी व्याख्याएं होती थी, खासकर जो पूरी तरह रिलेटिविस्टिक थी, उनसे काफी असहज रहते थे। वो खुद को विज्ञान का दुश्मन नहीं मानते थे, बल्कि ये मानते थे कि वो विज्ञान की एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा मानवीय तस्वीर पेश कर रहे हैं। उनका मानना था कि एक फिजिसिस्ट होने के नाते उन्हें लैब की असलियत की जो समझ थी वो बाहर से सिर्फ फिलॉसफी पढ़ने वालों को नहीं हो सकते।
कोई और रोचक बात उनके बारे में, कोई छोटी मोटी कहानी?
हाँ, उन्हें फोटोग्राफी का शौक था और वो अक्सर विजुअल परसेप्शन में होने वाले गेस्टाल्ट स्विच, जैसे वो बत्तख खरगोश वाली तस्वीर और वैज्ञानिक पैराडाइम शिफ्ट के बीच एक समानता देखते थे। ये दिखाता है कि वो कैसे अलग अलग फील्ड से कनेक्शन बनाते थे।
तो अंत में अगर हमें कुहन के योगदान को समेटना हो तो उनका मुख्य संदेश क्या था हमारे लिए?
मेरे ख्याल से उनका मुख्य संदेश ये है कि विज्ञान सिर्फ ठंडे तर्क और आंकड़ों का खेल नहीं है, ये गहरा मानवीय, सामाजिक और ऐतिहासिक सफर है। इसमें परंपरा है, रूढ़िवादिता है और फिर अचानक आने वाले क्रांतिकारी मोड़ भी हैं। ये मोड़ हमारी दुनिया की समझ को जड़ से बदल देते हैं। प्रगति सीधी रेखा में नहीं होती, बल्कि इन उथल पुथल भरे पड़ावों से होकर गुजरती है। विज्ञान इंसान करते हैं और इंसानी समाज में करते हैं।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि क्या ज्ञान के दूसरे क्षेत्र, जैसे कला हो, समाज हो, राजनीति हो, या हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में जो बड़े बदलाव आते हैं, क्या उन्हें भी पैराडाइम शिफ्ट के इस लेंस से देखने पर कुछ नई समझ मिल सकती है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। उद्घोषणा, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।